मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 19 अक्टूबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन भी करता हूं। आप लोगों को शायद स्मरण होगा कि फ्राइडे को मैंने जिस विषय पर बात की थी वह एक प्रकार से अंतिम एपिसोड था। हम लोग बात कर रहे थे परस्पर संबंधों को लेकर के और खासकर पेरेंट्स के साथ के संबंधों को लेकर। लेकिन इस बीच में जो मेरे पास मेल आए हैं, उन मेल को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसके कुछ और ऐसे इश्यू रह गए हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, अदरवाइज फिर जो बातचीत है वो अधूरी सी रह जाएगी। जो मुझे सबसे ज्यादा मेल्स मिले हैं वो इस बात को लेकर के थे कि सर, पेरेंट्स से हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें। या कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पेरेंट्स से हम बात करने में खुद ही डरते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अलग अलग तरह की समस्याओं को सबने अपने अपने ढंग से रखने की कोशिश की थी, लेकिन समस्या के केंद्र में जो बात थी वो ये कि पेरेंट्स से बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए। अगर किसी वजह से बातचीत बंद हो गई है तो कैसे अब हम उसे फिर से शुरू करें। फ्रेंड्स, डेफिनेटली यह एक बड़ी समस्या है। समस्या इस रूप में है कि यदि पेरेंट्स के साथ हम अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि पेरेंट्स बच्चों के साथ अपने संबंधों को ठीक ठाक करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो शुरुआत होगी वो संवाद से ही होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये बात अलग है कि वो संवाद सीधे सीधे दोनों के बीच हो जाए या किसी मध्यस्थ के जरिए हो, ये एक अलग बात है, लेकिन बिना बातचीत किए तो बात बनेगी ही नहीं। तो अब क्या हल है? तो दोस्तों, इसी पर मैं आज आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। मैं इसकी चर्चा एक घटना से करना चाहूंगा। ये बात है लगभग सन 2010 की। 2009 में मैंने सर्विस से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था और 2010 में दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था जिसको अटेंड करने की सलाह मेरे बैचमेट ने दी थी। उन्होंने कहा कि ये लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित प्रोग्राम है, 3.5 दिन का वो प्रोग्राम होता था, दिन भर चलता था और लास्ट डे हाफ डे होता था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसे जरूर अटेंड कीजिए। मैंने उनकी बात मानी और मैंने अपने को ब्रदर के साथ, मेरे साडू साहब जो दिल्ली में रहते हैं, उनके साथ हम लोगों ने वो प्रोग्राम अटेंड करने का फैसला किया। लाइफ मैनेजमेंट पर ही था वो, अच्छा प्रोग्राम था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो प्रोग्राम था, मतलब उसके जो चयन है वो पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। दोस्तों, बहुत सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता था और शाम को 6 बजे तक चलता रहता था और लगातार इस बीच में चीजें होती रहती थी। उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है जिसको मैं यहां बताना चाहूंगा जिसके बारे में, वो ये कि एक दिन तक लेक्चर्स होने के बाद और कुछ बातें होने के बाद, वो सेकेंड डे जो भी वहां लोग उपस्थित होते थे, पार्टिसिपेंट्स होते थे, उनसे वो कहते थे कि ठीक है, आपकी अपने दोस्त से बात नहीं हो रही है, माँ से बात नहीं हो रही, पिता से बात नहीं हो रही है, भाई से बात नहीं हो रही, जिनसे भी बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं है, आप अपनी तरफ से फोन लगाइए और फोन लगा करके उनसे बात करने की शुरुआत कीजिए। आप फोन लगाइए। बहुत लोगों को हिचक होती थी कि कैसे फोन लगाएं, लेकिन वो जोर देकर के कहते थे कि आप फोन लगाइए। और सच पूछे तो एक दिन के लेक्चर्स के जरिए वो हमारे मस्तिष्क का जो एक ऐठन सी होती है ना, ऐठ होती है कि नहीं हम क्यों बात करेंगे, और हम तो बड़े तोपचंद हैं, हमारी कोई गलती थोड़ी ना है, इसी तरह की बातें तो आती हैं। बात करना है तो वो बात करे, अगर हम बात करेंगे तो और अकड़ हो जाएगा, इससे तो उसकी जीत हो जाएगी, वो तो फिर और नहीं मानेगा, इस तरह की बातें हम सोचते रहते हैं। तो इस तरह की सोच को उन्होंने दुरुस्त कर दिया था समझा बुझा करके। तो लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी थी कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि बात की जाए तो ठीक है, हम बात करते हैं। और इसके लिए वो बाकायदे समय देते थे कि ठीक है, आप जाइए, आधे घंटे की छूट है, आप सब अपने अपने मित्रों से या जिनसे भी आपकी बातचीत बंद हो गई है आप उनसे बात कीजिए। अब देखिए, बातचीत चाहे जिससे भी बंद हो, हर कोई ऐसी स्थिति में होता ही है कि किसी न किसी से बातचीत बंद है। तो लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स बात करते थे, अपने लोगों से बात करते थे, और दोस्तों इसके बाद जब फिर से असेंबल होते थे हम सब उस हॉल में, और लगभग लगभग 150 लोग उसमें भाग लेते थे, मुझे जहां तक ध्यान है 150 लोग होते थे, और जब असेंबल होते थे तो सभी के चेहरे बदले हुए होते थे। किसी की आंखें सूजी हुई होती थी, यानी कि कोई रो रहा होगा, किसी के गले भर भराए हुए होते थे, वो उसी तरह से नहीं रह जाते थे जिस तरह से उन्होंने वो असेंबली छोड़ी थी, बदले हुए होते थे। इसके बाद फिर वे अनुभव सुनाने के लिए कहते थे, कुछ लोगों को बुलाते थे और कहते थे कि आप अपने अनुभव सुनाइए। तो पार्टिसिपेंट्स स्टेज पर जाते थे और अपने अनुभव सुनाते थे, और इनफैक्ट सच बात तो यह है कि वो अपने अनुभव को सुना ही नहीं पाते थे, रोने लगते थे। किसी की तो शुरुआत ही रोने से होती थी, कोई इतना रोने लगता था कि वो शुरुआत ही नहीं कर पाता था। कुल मिलाकर के बात ये होती थी फ्रेंड्स, मतलब ये पूरा माहौल बन जाता था, जो एक सच्चाई भी थी वो ये थी कि हम ये मानकर चल रहे थे कि ये हमसे बात नहीं करेगा, ये हमसे बहुत ज्यादा नाराज है, अगर हम फोन करेंगे तो ये बिल्कुल डांट देगा, मेरा फोन ही नहीं उठाएगा, इस तरह की ढेर सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। लेकिन हरेक ने ये कहा कि नहीं, उन्हें रिस्पॉन्स मिला। जब उन्होंने फोन किया तो शुरू में हो सकता है कि थोड़ी सी नाराजगी से सामने वाले ने बात की हो, हाँ हाँ बोल क्या बात हो गई, हाँ क्यों फोन किया है भाई मुझे, इस तरह की बातों से शुरू होती थी। लेकिन वो बता देते थे, समझा देते थे कि देखिए वो नाराज होगा, उखड़ेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है, आपको किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि अगर सामने वाला उखड़ा हुआ और आप भी उसके बराबर उखड़ गए या उससे ज्यादा उखड़ गए तो बात खत्म हो गई, संवाद खत्म हो गया। तो दोस्तों एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे रिस्पॉन्स न मिला हो। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो बातें की गई वो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही बातें की गई, लोगों ने बकायदे विदेशों में भी, बहुत से ऐसे थे उसमें जिनके पेरेंट्स विदेश में रह रहे हैं, जिनके दोस्त या भाई बहन रिश्तेदार विदेश में रह रहे हैं, उनसे भी बातें की और उनसे भी रिस्पॉन्स मिला। कुछ के तो रिस्पॉन्स इस तरीके से थे कि हम अब दिन में यहां बात कर रहे हैं और वहां रात है और इसने जोश में आकर के रात को उठा दिया, और उनको पहले से बता दिया गया था कि अगर ऐसा हो वो फोन उठाए और नाराज होने लगे तो कहने लगे कि तुम, आपको यही जवाब देना है कि इतनी ज्यादा याद आ रही थी कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा था और मुझे लगा कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में बात करनी ही करनी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत घुटन हो रही थी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। तो उन्होंने उनको बता दिया गया था कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। दोस्तों उसके बाद से मेरा यह विश्वास बिल्कुल पक्का हो गया इस प्रैक्टिकल स्थिति को देखने के बाद कि नहीं, संवाद शुरू किए जा सकते हैं, संवाद मरते नहीं हैं। नदियां सूख जाती हैं लेकिन जलधारा की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जलधाराएं कैसे आ सकती हैं, इनका उद्गम कैसे हो सकता है, इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग कल बातें करेंगे। हाँ, यदि आप लोगों की अपनी कोई व्यक्तिगत ऐसी समस्या है जो आप बताना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप बता दें, मैं उन्हें भी फिर अपनी बातों में शामिल करूंगा। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।